प्रिय छात्रों नमस्कार। अपन बात कर रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की, और अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो व्याकरणिक बिंदु दिए गए थे उसमें आज तक अपन ने पढ़ा था अलंकारों के बारे में। आज दूसरा व्याकरणिक बिंदु, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि भाषा, व्याकरण और लिपि, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ बिंदु है, और इनमें से दो अंक का प्रश्न है वो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आएगा, चाहे वो भाषा से संबंधित आए, चाहे व्याकरण से या लिपि से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाषा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण हमेशा उसे विचार विनिमय करना पड़ता है। अब विनिमय का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। तो विचार विनिमय के लिए कभी तो वो शिविर हिलाकर, कभी संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को व्यक्त कर देता है, तो कभी कभी उसे ध्वनियों या शब्दों या वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि, शब्द या वाक्यों के माध्यम से वो विचार विनिमय करता है। तो इस प्रकार ये प्रमाणित होता है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव और मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है, और इस प्रकार समाज में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। जैसा हम सोचते हैं कि यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक, आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती, यानी ये सब कुछ है वो भाषा के द्वारा ही संभव हुआ है और होता रहेगा, यानी चाहे भौतिक उन्नति है, चाहे वैज्ञानिक उन्नति है, चाहे आध्यात्मिक विकास है, या अपने पूर्वजों के अनुभव है, उन सब का लाभ हम भाषा के माध्यम से ही ले रहे हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुआ है, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पन्न है, और भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। स्पष्ट रूप से भाषा की परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा को ये भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है। वापस उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा यदि बोर्ड की परीक्षा में आए प्रश्न आ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप स्पष्ट लिख सकते हैं, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। परिवर्तन मनुष्य और प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा या कहीं सुना, कि सब भाषाओं की जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर वर्तमान में जैसे हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, उड़िया आदि अनेक भाषाएं हैं वो समय के साथ साथ प्रचलित हुई है। और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश भाषा से हुई है, और अपभ्रंश में ही शोर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्न हजारों बार कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप ध्यान से नोट करें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो अपभ्रंश भाषा से हुई, और अपभ्रंश में भी शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। और इस प्रकार भारत की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। राजभाषा का अर्थ वह भाषा जिसमें सारे राजकार्य किए जाए। तो ये तो हुई मोटे रूप में भाषा की उत्पत्ति या भाषा की परिभाषा। अब भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार की होती है, या भाषा के रूप कितने हैं, या भाषा के भेद कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। बोर्ड में प्रश्न आया हुआ भी है कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं, या प्रकार कौन से हैं, या भाषा कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको भाषा के रूप या प्रकार या भेद दो लिखने हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, नंबर एक मौखिक, नंबर दो लिखित। और कुछ व्याकरणाचार्य तीसरी प्रकार भी मानते हैं, सांकेतिक भाषा। लेकिन अपन को भाषा के प्रकार यदि बोर्ड में प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर एक मौखिक भाषा। साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं, यानी आप बोलकर अपने विचारों भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात मौखिक भाषा से आपसी बातचीत, भाषण, संवाद आदि होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रधानमंत्री की भाषण को सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। अब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया वो बोल कर ही दिया, तो इस प्रकार जो बोलकर विचार या भाव व्यक्त किए जाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। नंबर दो लिखित भाषा। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को, जब उच्चरित जिसका हम उच्चारण करते हैं, ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में है तो ए, ए एक ध्वनि संकेत है, कह एक ध्वनि संकेत है, मैं एक ध्वनि संकेत है, ले एक ध्वनि संकेत है। तो इन तीनों वर्णों को मिला दिया जाए तो एक कमल शब्द बन जाता है, तो ये एक लिखित भाषा हो गई। वापस आप ध्यान से लिखित पर भाषा की परिभाषा समझ सकते हैं। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं, अर्थात उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर है वो लिख रहे, तो ये क्या हुई लिखित भाषा। अब एक प्रश्न बनता है कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है। तो मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, अर्थात मौखिक भाषा के वाक्य है वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा के वाक्य है वो बड़े होते हैं। नंबर एक यानी लिखित और मौखिक भाषा में अंतर सबसे पहला ये है कि मौखिक भाषा के वाक्य है वो छोटे होते हैं, लिखित भाषा के वाक्य है वो बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि व्याकरण नियमों का ध्यान रखा जाता है। नंबर दो, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, यानी आपके हृदयगत जैसे ही भाव आते हैं तो उसे आप बिना उल्ट फेर के सीधे व्यक्त कर देते हैं, जबकि लिखित भाषा है वो स्वाभाविक न होकर कृत्रिम होती है, यानी बनावटी होती है, उसमें व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी उसमें बदलाव किया जा सकता है, जबकि लिखित भाषा है वो परिवर्तनशील नहीं होती है, अर्थात वो स्थिर होती है। अंतिम जो इसमें अंतर है, मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। तो ये तो वह आपके लिखित और मौखिक भाषा में अंतर, यानी पहला अंतर मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं जबकि लिखित भाषा के वाक्य बड़े होते हैं। नंबर दो, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, लिखित भाषा कृत्रिम होती है। नंबर तीन, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित भाषा है वो स्थिर होती है। अंतिम जो अंतर है, मौखिक भाषा सदैव ताजगी रहती है जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। अगला जो बिंदु है वो है भाषा और बोली में अंतर, यानी भाषा और बोली में क्या अंतर है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं, अर्थात चाहे बोली को हो चाहे उपभाषा को। भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें न तो साहित्य रचना होती है, न उसका व्याकरण होता है और न उसका शब्दकोश होता है। अर्थात बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, शब्दकोश नहीं होता और बोली में साहित्यिक रचना भी नहीं की जाती। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य लिखा जाता है। बोर्ड की परीक्षा में यदि आपकी भाषा और बोली में अंतर आए तो आप ये लिख सकते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, बोली का व्याकरण नहीं होता है और बोली का शब्दकोश नहीं होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, उसका व्याकरण होता है, उसका शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण या अन्य कारणों से यदि उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, उसे या उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वो भाषा बनने लगती है। यानी प्रश्न आ सकता है कि कोई भी बोली भाषा कब बन जाती है, जब उसका संरक्षण और अन्य कारणों से उस बोली का क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगता है और उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है तो वो बोली है, वो भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण भी निश्चित होने लगता है। अगला जो भाषा से संबंधित बिंदु है वो है भाषा के भेद या विविध रूप, जिसमें पहला मूल भाषा। आज विश्व में बोली जाने वाले, यानी पूरे संसार में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। चाहे अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आधुनिक आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार है। अगला जो बिंदु है वो है विभाषा। प्रांतीय आधार पर, अब प्रांत का मतलब यहाँ राज्य से, देश नहीं, प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। इन भाषाओं में शासन का कार्य संचालन भी होता है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। ये सारी प्रांतीय भाषा, जैसे हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और वो सारी 22 भाषाएं हैं वो प्रांतीय भाषाएं हैं, जिसमें उस राज्य का शासन कार्य भी किया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है बोली। प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली मंडल स्तरीय, जिसे आप खंड स्तरीय भी कह सकते हैं, मंडल स्तर पर स्वीकृत, जिसमें साहित्यिक रचनाएँ भी होती है, उन भाषाओं को बोली कहा जाता है, जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी आदि ये बोलियों के रूप है। उपबोली, अगला बिंदु है वो है उपबोली। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति की भाषा अलग होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उपबोली बन जाती है, उससे बोली और विभाषा की सृष्टि होती है। यानी वो उपबोली आगे जाकर, यानी वो विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है तो वो बोली बन जाती है, और बोली जब और विस्तृत होती है तो वो विभाषा बन जाती है। तो ये तो वह आपकी भाषा के विविध रूप। अगला जो बिंदु है वो है भाषा की इकाइयाँ। यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड में बनता है कि भाषा की कौन कौन सी इकाई। तो भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। पहली ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और 5वां वाक्य। नंबर 1, ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। नंबर 2, वर्ण। वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से, वक्ता यानी बोलने वाला, मुख से उच्चरित होता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्ण की परिभाषा को दूसरे रूप में आप यूँ समझ सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जिसके न तो टुकड़े किए जा सकते हैं न बांट सकते हैं, जैसे क, च, त, प आदि, ये सारे क्या है, वर्ण है। तीसरा जो बिंदु है वो है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे के, म, ल, ये तीनों वर्ण हैं। जब इसे मिला दिया जाए तो कमल बन जाता है। कमल एक शब्द है। चौथा बिंदु है वो है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त है शब्द को पद कहते हैं। अर्थात जिसके साथ कारक विभक्ति लगी हुई हो तो उसे पद कहा जाता है, जैसे राम ने, ये ने विभक्ति साथ में लगी हुई है इसलिए राम ने एक पद है, रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा पद है। और अंतिम जो बिंदु है वो है वाक्य। शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वो शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वापस ध्यान दें आप, शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वो शब्द समूह, यानी शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अलग शब्द है, पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ता अलग शब्द है, हूँ अलग है, लेकिन इन्हें साथ पढ़ा जाए तो ये क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो इस प्रकार ये 5 भाषा की इकाइयाँ हुई। जिसमें पहली ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और पांचवा वाक्य। अब अंतिम जो भाषा संबंधी बिंदु है वो है हिंदी भाषा की बोलियां। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। मोटे रूप में हम यही समझते हैं कि वर्तमान में खड़ी बोली है वही हिंदी है, लेकिन हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और कुल 18 बोलियां हैं, जिसमें पहली उपभाषा है पश्चिम हिंदी, और पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली जिसे कौरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और कनौजी। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कनौजी। दूसरी हिंदी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी, और राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। चौथी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में बोलियां 3 हैं, गढ़वाली, कुमायुनी और नेपाली। और अंतिम जो हिंदी की उपभाषा है बिहारी हिंदी, जिसमें भी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये हुआ आपके भाषा का टॉपिक या बिंदु, और आप नोट कर लें हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। धन्यवाद।